एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
Thank you.
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का दास परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे सम्मुख आते हैं, हमारे मन और हृदय को खोल दे, तेरे वचन को समझने के लिए मदद करा, उसके अनुसार चलने के लिए हमें तेरा आत्मिक शक्ति दे। पिता मेरे संग हो, तेरा पवित्र आत्मा का दान दे ताकि मैं तेरे वचन को तेरे सामर्थ के साथ बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है परमेश्वर की व्यवस्था का स्वभाव। परमेश्वर जब सिनै पर्वत पर उतरा और मूसा को अपना आज्ञा दिया तो क्या ही समय था, कैसा दृश्य था। सभी आंखें पर्वत पर केंद्रित हैं। इसका शिखर एक घने बादल से ढका था जो काला पड़ने के साथ साथ तब तक नीचे की ओर बहता रहा जब तक कि पूरा पर्वत रहस्य में नहीं समा गया। अंधेरे से बिजली चमकती रही जबकि गर्जन गूंजती और फिर से गूंजती रही। अब सिनै पर्वत पूर्ण रूप से धुएं में ढक चुका था क्योंकि प्रभु उसके ऊपर आग में उतरा था। उसका धुआं भट्टी के धुएं समान ऊपर उठ रहा था और पूरा का पूरा पहाड़ थरथरा गया। तुरही की विस्फोटक आवाज लंबे समय तक सुनाई दे रही थी। आवाज तेज और तेज होती जा रही थी। यह हम पढ़ते हैं निर्गमन 19 का 18 और 19 में। परमेश्वर की उपस्थिति का यह भव्य प्रकटन इतना शक्तिशाली था कि संपूर्ण इज़राइल कांप उठा। अचानक गड़गड़ाहट और तुरही बंद हो गई और सीधा युक्त सन्नाटा छा गया। फिर परमेश्वर ने घने अंधकार में से, जिसने उसे घेर रखा था जब वह पर्वत पर खड़ा था, बात की। अपने लोगों के प्रति गहरे प्रेम से प्रभावित होकर उसने 10 आज्ञाओं की घोषणा की। मूसा ने कहा, यहोवा सिनै से आया और वह लाखों संतों के साथ आया, उसके दाहिने हाथ से उनके लिए ज्वालामय विधियां निकली। वह निश्चय लोगों से प्रेम करता है, उसके सब संत तेरे हाथ में हैं, वे तेरे पांव के पास बैठे हैं, हर कोई तेरे शब्द प्राप्त करता है। व्यवस्था विवरण 23:2-3। जब उसने सिनै पर व्यवस्था दी तो परमेश्वर ने न केवल ब्रह्मांड का राजसी सर्वोच्च अधिकारी के रूप में स्वयं को प्रकट किया, उसने स्वयं को अपने लोगों का उद्धारकर्ता के रूप में भी चित्रित किया। निर्गमन 20:2। ऐसा इसलिए क्योंकि वह उद्धार करता है जिसने न केवल इज़राइल को परंतु संपूर्ण मानवता को, सबोपदेशक 12:13, 10 संक्षिप्त व्यापक और आधिकारिक आज्ञाओं का पालन करने के लिए कहा जो मानव जाति के परमेश्वर के प्रति एवं अपने साथियों के प्रति कर्तव्य को शामिल करती हैं। और परमेश्वर ने कहा, यह हम पढ़ते हैं बाइबल में निर्गमन में, परमेश्वर ने कहा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना और ना तेरा बेटा ना तेरी बेटी ना तेरा दास ना तेरी दासी ना तेरे पशु ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। हम इसे पढ़ते हैं निर्गमन 20:3-17 में, यह वहां लिखा गया है। आइए हम व्यवस्था का स्वभाव को देखें। परमेश्वर के चरित्र के प्रतिबिंब के रूप में 10 आज्ञाएं नैतिक, आध्यात्मिक एवं व्यापक हैं, जिनमें विश्वव्यापी सिद्धांत निहित हैं। पहला है व्यवस्था देने वाले के चरित्र का एक प्रतिबिंब। शास्त्र उसके व्यवस्थाओं में परमेश्वर के गुण देखता है। परमेश्वर के समान यहोवा की व्यवस्था खरी है एवं यहोवा की गवाही शुद्ध है। भजन संहिता 19:7-8। व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा पवित्र और न्याय संगत और अच्छी है। रोमियो 7:12। तेरी आज्ञाएं सत्य हैं और बहुत समय से मैं तेरी चेतावनियों को जानता हूँ कि तूने उनकी नींव सदा के लिए डाली है। भजनकार लिखता है, यह हम पढ़ते हैं भजन संहिता 119:151-152 में, निश्चय ही तेरी सब आज्ञाएं धर्ममय हैं। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 119:172 में। दूसरा है एक नैतिक व्यवस्था। 10 आज्ञाएं मानवता के लिए परमेश्वर के आचरण का नमूना प्रस्तुत करती हैं। ये हमारे सृष्टिकर्ता व उद्धारकर्ता के साथ हमारे संबंधों को एवं हमारे साथियों के प्रति हमारे कर्तव्यों को परिभाषित करती हैं। शास्त्र परमेश्वर की व्यवस्था के उल्लंघन को पाप कहता है। 1 यूहन्ना 3:4। तीसरा है एक आत्मिक व्यवस्था। व्यवस्था तो आत्मिक है। रोमियो 4:14। इसलिए केवल वे जो आत्मिक हैं एवं जिनके पास आत्मा का फल है उसे मान सकते हैं। 1 यूहन्ना 15:4 और गलातियों 5:22-23। यह परमेश्वर का आत्मा ही है जो हमें उसकी इच्छा को पूरी करने का सामर्थ्य देता है। 1 प्रेरितों 1:8 और भजन संहिता 51:10-12। मसीह में बने रहने से हम उस शक्ति को पाते हैं जो उसकी महिमा के लिए फल लाने के लिए आवश्यक है। 1 यूहन्ना 15:5। मानव व्यवस्था केवल प्रकट कार्यों को संबोधित करती है, परंतु 10 आज्ञाओं का विस्तार बड़ा है। भजन संहिता 119:96। जो हमारे अति गुप्त विचार, अभिलाषाएं एवं भावनाएं, जैसे कि जलन, ईर्ष्या, लोभ एवं महत्वाकांक्षा को छूती है। पहाड़ी उपदेश में यीशु ने व्यवस्था के इस आत्मिक पहलू को महत्व दिया है, जो प्रकट करता है कि अपराध का आरंभ मन से होता है। मत्ती 5:21-22-27-28 तथा मरकुस 7:21-23। चौथा एक सकारात्मक व्यवस्था। 10 आज्ञाएं निषेधा आज्ञाओं की केवल एक अल्प श्रृंखला से कहीं अधिक है। इसमें दुर्गामी सिद्धांत शामिल हैं। यह न केवल उन चीजों तक विस्तृत है जो हमें नहीं करनी चाहिए, परंतु उन चीजों तक भी जो हमें करनी चाहिए। हमें न केवल बुरे कार्यों व विचारों से दूर रहना है, बल्कि हमें परमेश्वर द्वारा दिए गए उपहारों और वरदानों को अच्छे के लिए उपयोग करना सीखना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक नकारात्मक निषेधाज्ञा में सकारात्मक आयाम है। उदाहरण के लिए 6वीं आज्ञा तू हत्या ना करना का अपना सकारात्मक पहलू है। तू जीवन को बढ़ावा देना, यह परमेश्वर की इच्छा है कि उसके अनुयायी अपने प्रभाव के क्षेत्र में आने वाले हर किसी के कल्याण और खुशी को बढ़ावा देने की कोशिश करें। एक गहन अर्थ में सुसमाचार आदेश यीशु मसीह में उधार एवं अनंत जीवन का सुसमाचार छठी आज्ञा में प्रस्तुत सकारात्मक सिद्धांत पर टिका हुआ है। दस आज्ञा व्यवस्था को उतना निषेधात्मक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए जितना कि दया की दृष्टि से। इसके निषेध आज्ञा पालन में खुशी की निश्चित गारंटी है। जब मसीह में प्राप्त की जाती है तो यह हमारे भीतर चरित्र की शुद्धता पर कार्य करती है जो हमें अनंत युगों तक आनंद देगा। आज्ञा पालन करने वालों के लिए यह एक सुरक्षा की दीवार है। हम इसमें परमेश्वर की अच्छाई देखते हैं जो मनुष्यों को धार्मिकता के अपरिवर्तनीय सिद्धांतों को प्रकट करके पाप के परिणामों से होने वाली बुराइयों से रक्षा करना चाहता है। आगे है एक सरल व्यवस्था। दस आज्ञाएं अपनी सरल समझ में गहन हैं। वे इतनी संक्षिप्त हैं कि एक बच्चा भी उन्हें जल्दी से याद कर सकता है, फिर भी इतनी दूरगामी कि वे प्रत्येक संभव पाप को शामिल करती हैं। परमेश्वर की व्यवस्था में कोई रहस्य नहीं है, सभी उसमें निहित संपूर्ण महान सत्य को समझ सकते हैं। निर्बल बुद्धि भी इन नियमों को समझ सकती है। अति अज्ञानी भी जीवन को नियंत्रित कर सकता है और दिव्य स्तर पर चरित्र का निर्माण कर सकता है। छठा है सिद्धांतों की व्यवस्था। दस आज्ञाएं सभी सही सिद्धांतों का सारांश है। वे हर समय संपूर्ण मानवता पर लागू होती हैं। शास्त्र कहता है, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। सबोपदेशक 12:13। दस नियम, दस वचन या दस आज्ञाएं निर्गमन 34:28 दो भागों में गठित हैं, जो पत्थर की दो पटियाओं में दर्शाई गई हैं, जिन पर परमेश्वर ने लिखा था। व्यवस्था विवरण 4:13 में हम पढ़ते हैं, प्रथम चार आज्ञाएं हमारे सृष्टिकर्ता एवं उद्धारकर्ता के प्रति हमारे कर्तव्यों को नियंत्रित करती हैं और अंतिम छल लोगों के प्रति हमारे कर्तव्यों को नियंत्रित करती हैं। यह दोतरफा विभाजन प्रेम के दो महान मौलिक सिद्धांतों से प्राप्त होता है, जिससे परमेश्वर का राज्य संचालित होता है। तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। लुका 10:27। और इसे हम तुलना कर सकते हैं व्यवस्था विवरण 6:4-5 से तथा लेवियस्ता 19:18 से। जो इन सिद्धांतों को जीते हैं वे दस आज्ञाओं के साथ संपूर्ण सामंजस्यता में होंगे, क्योंकि आज्ञाएं इन सिद्धांतों का और भी विस्तार से वर्णन करती हैं। पहली आज्ञा एक सच्चे परमेश्वर की विशिष्ट आराधना को निर्देशित करती है। दूसरी आज्ञा मूर्ति पूजा को वर्जित करती है। तीसरी अनादर व झूठी गवाही के उपयोग को प्रतिबंधित करती है, जिसमें दिव्य परमेश्वर के नाम का आह्वान करना शामिल है। चौथी शब्द के पालन के लिए कहती है, और स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता के रूप में सच्चे परमेश्वर की पहचान करती है। पांचवी आज्ञा बच्चों को अपने माता पिता के अधीन होने की मांग करती है, जो आगामी पीढ़ियों को परमेश्वर की प्रकट इच्छा के संचरण के लिए उसके द्वारा अभिकर्ता के रूप में नियुक्त हैं। आप देखिए व्यवस्था विवरण 4:6-9 और 6:1-7। छठी जीवन को पवित्र मानकर सुरक्षित रखती है। सातवीं में पवित्रता शामिल है, वह वैवाहिक संबंधों की सुरक्षा करती है। आठवीं आज्ञा संपत्ति की सुरक्षा करती है। नौवीं सत्य की रक्षा करती है, वह झूठी गवाही को वर्जित करती है। और दसवीं दूसरों की संपत्ति के लालच को वर्जित करके समस्त मानव संबंधों की जड़ में जाती है और एक हम देख सकते हैं एक अनोखी व्यवस्था। यह एक अनोखी व्यवस्था है। 10 आज्ञाओं में एक अनोखापन है। केवल वे ही ऐसे शब्द हैं जिन्हें परमेश्वर ने संपूर्ण राष्ट्र के समक्ष मौखिक रूप से कहे। व्यवस्था विवरण 5:22 मनुष्यों के भुलंकर दिमाग पर भरोसा न करते हुए फिर परमेश्वर ने इन व्यवस्थाओं को पत्थर की 2 पट्टियों पर अपनी उंगलियों से लिखा जिन्हें निवास स्थान में संदूक के अंदर संरक्षित किया जाना था। निर्गमन 31:18 आज्ञाओं को लागू करने में इसराइलियों की सहायता करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें कुछ अतिरिक्त व्यवस्थाएं दी जो परमेश्वर के साथ एवं एक दूसरे के साथ उनके संबंधों को विस्तृत रूप से वर्णन करती हैं। इन अतिरिक्त व्यवस्थाओं में से कुछ तो इसराइल के नागरिक मामलों पर केंद्रित थी, नागरिक व्यवस्थाएं, जबकि अन्य पवित्र स्थल की सेवाओं की विधियों को नियंत्रित करती थी, विधि व्यवस्थाएं। परमेश्वर ने इन अतिरिक्त व्यवस्थाओं को मध्यस्थ मूसा के माध्यम से लोगों को बताया जिसने उन्हें व्यवस्थाओं की पुस्तक में लिखा एवं वाचा के संदूक के पास रख दिया। व्यवस्था विवरण 31:25-26 संदूक में नहीं, जैसा कि उसने परमेश्वर के सर्वोच्च प्रकाशन 10 आज्ञाओं के साथ किया था। इन अतिरिक्त व्यवस्थाओं को मूसा की व्यवस्था की पुस्तक के रूप में जाना गया। यहोशू 8:31 नहेमिया 8:1 और दूसरा इतिहास 25:4 या साधारणगत मूसा की व्यवस्था, दूसरा राजा 23:25 और दूसरा इतिहास 23:18 यह एक आनंददायक व्यवस्था है। परमेश्वर की व्यवस्था आत्मा के लिए एक प्रेरणा है। भजनकारी ने कहा मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर तेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। यहाँ तक कि जब मैं संकट और सकेती में फंसा हूँ, उसने कहा मैं तेरी आज्ञाओं से सुखी हूँ। वजन संहिता 119:97 और 127 और 143 उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। 1 यूहन्ना 5:3 अपराध करने वाले व्यवस्था को दुखद बोझ मानते हैं क्योंकि पापी मन ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। रोमियो 8:7 परमेश्वर का व्यवस्था प्रेम का व्यवस्था है। जो इसे मानते हैं आनंदित होंगे, वे आनंद पाएंगे, लेकिन जो इसे नहीं मानना चाहते हैं, बोझ समझते हैं, उनके लिए यह बोझ होगा। इसलिए आइए हम परमेश्वर के बातों को माने। परमेश्वर जो महान और प्रेमी परमेश्वर है हमारा भलाई चाहता है। हम उसकी आज्ञाओं से प्रीति रखें, उसे मांगे, उसे माने, वह हमारे भलाई के लिए हमारे जीवन को आगे अगुवाई करेगा। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान परमेश्वर पिता, हम तेरे सामने अपने सिरों को झुकाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमें सारे आशीषों को देने के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं जीवन देने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, मेरे हरेक श्रोताओं के संग हो, उन्हें तेरा वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। हमें तेरा वचन को अपने मन हृदय में रखने के लिए मदद कर पिता, और उसके पीछे चलने के लिए हमें सामर्थ दे, शक्ति दे, तेरा पवित्र आत्मा का अगुवाई और बल दे पिता।
गुनाह की राह पर फिर से कभी जाया ना करो। मसीह के नाम से हर पल यहाँ मुस्काया करो। अंधेर पर कभी भी तुम यकीन लाया न करो, गुनाह की राह।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadvent.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।